Om Shanti. Good morning. Namaste. आज का गीत आज की मुरली के संबंधित है. आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु और फुल स्टॉप बिंदु. आत्मा बिंदु तो सहज समझ में आ जाता, अभ्यास करना अलग बात है, समझना सहज है. और उस आधार पर बाबा के साथ भी संबंध का अनुभव होने लगता. बाबा ने बहुत सुंदर ढंग से वो सारा डिटेल में बताया है. नो ट्रांसलेशन बीना. FM isn't working. Can't hear the translation. What is it? Bina, they can only hear me. They can't hear the translation. No, I started speaking in Hindi a few minutes ago. She's saying I'm speaking in English, which I am. जी, मैं अंग्रेजी में पहले सिर्फ बता रही थी कि अभी का कार्यक्रम किस प्रकार से होगा. परंतु आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु और फिर बड़ा लेसन हरेक के लिए यही आता, ड्रामा बिंदु. तो एक तो है कि हम खुद इस लेसन का अभ्यास करें, परंतु साथ ही साथ जब बाबा की सेवा में हाजिर होते हैं, जो अन्य आत्माएं संबंध में आती है, संपर्क में आती है, उन्हों को ये लेसन याद दिलाना इतना सहज नहीं होता. मैं क्यों ये कह रही हूँ, क्योंकि अभी जो ये टूर रहा, जो मैं कल रात्रि को ही आकर के लौटी, ये रहा दो ऐसे देश में. वैसे तो ब्रैटिस्लावा में जाना हुआ, वहां की कहानियां तो चेकोस्लोवाकिया दो भाग हो गए, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक, उसकी कहानियां भी अलग है. परंतु फिर उसके बाद भी है ना, और फिर उसके बाद में हम गए सारायेवो. किसने सारायेवो स्थान का नाम सुना है? सभी ने नहीं. तो ये ऐसा देश है यूगोस्लाविया, जिसका भारत के साथ बहुत गहरा घनिष्ठ संबंध था. जो वहाँ का मुख्य था टीटो, उसका नेहरू के साथ बिल्कुल बहुत नजदीकी फ्रेंडशिप थी. तो यूगोस्लाविया एक देश, और एक देश पांच टुकड़ा हो गया. जब मैं जून मास में क्रोएशिया में गई थी, तो वहाँ की कुछ बातें मैंने आकर के सुनाई थी, और वहाँ तो बहुत अच्छी तरह से मैं समझती 15 ज्यादा ही समय से ये बहुत अच्छी तरह से सेंटर स्थापन होके अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स निकले और वो वहाँ की सेवाएं चालू है. तो उनके मन में भी वो युद्ध की बातें अभी तक छपी हुई है. परंतु ये ऐसा देश है बोस्निया, जिसका जब आजकल मैं रेडियो नहीं सुनती हूँ, उन दिनों में मैं रोज 3 मिनट के लिए बीबीसी वर्ल्ड न्यूज सुनती थी. 3 साल तक 4 साल तक हर रोज बोस्निया सारायेवो, बोस्निया श्रेबनिका, ये सब नाम आते ही रहते थे लगातार. क्यों? क्योंकि यूरोप ही गिना जाएगा, ईस्टर्न यूरोप. परंतु इस देश में इंटरनेशनल कम्युनिटी साक्षी होकर के देख रही है कि वहां कितने हजारों के अंदाज में रोज हर रोज उनका खात्मा हो रहा है. कुछ नहीं कर रहे हैं. अजीब सी ड्रामा की सीन थी। और अभी जिन लोगों ने खास बोस्निया में इतना अत्याचार हुआ था, उन लोगों के साथ बहुत घनिष्ठ मुलाकात होती रही और टॉपिक वहां की बहन ने रखा था। और वहां की बहन कितना समय ज्ञान में है जो निमित्त बनी है सेंटर खोलने की? 4 साल बस। कोई तो यहाँ 30 साल 40 साल से ज्ञान में है, वहां पर 4 साल। 2 साल यहाँ लंदन में पालना ली, ज्ञान लिया कॉमन गार्डन, फिर यहाँ पर पालना ली, रोज यहाँ आती रही और मदद भी अच्छी करती रही। परंतु उसको अपना देश बार बार याद आता था, फिर बीच बीच में चक्कर लगाती रही। और फिर तो आकर जाकर के वहाँ जब बहुत अच्छी फुलवारी बन गई, उन्होंने कहा कि आप अभी जाओ नहीं, तो वहाँ बैठ गई है। जब दादी का प्रोग्राम था आई नो हाउ टू लिव आई नो हाउ टू डाई, वही एमसी रही थी मरीना। तो उसने टॉपिक्स ही ऐसे रखे थे जो हिलाने वाले थे। फर्स्ट टॉपिक था, जैसे ही हम पहुंचे एयरपोर्ट से, 1 घंटे के बाद पब्लिक हॉल में प्रोग्राम था, और टॉपिक था हाउ टू लिव विदाउट फियर। और उन सबको उस समय तो तुरंत ही देश में पहुंचते इतना पता नहीं होता, परंतु बहुत स्पिरिचुअल ढंग से, ज्यादा फिजिकल बातों को नहीं उठाया, थोड़ा बहुत टच किया। परंतु हॉल तो बिल्कुल पैक था, 220 पीपल, और है सिर्फ 2 पक्के ब्राह्मण, बाकी 15 लोग हैं जो मुरली सुनते हैं और अभी शुरू किया है ब्राह्मण मार्ग पर चलना, परंतु 2 पक्के ब्राह्मण और उन्होंने वो सेवा की थी। तो जिस समय सुन रहे थे बिल्कुल शांति से सुन रहे थे, बहुत अटेंशन से, जिस समय प्रश्न पूछने लगे उनके दुख की कहानियां निकलने लगी। और फिर उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने वहां पर ही निमंत्रण दिया सबको दूसरे दिन आने के लिए, तो करीब 20 से ज्यादा लोग आ गए। छोटा सा ये सेंटर होता, परंतु वहां पर उसने टॉपिक रखी थी द पावर टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। उसमें 4 फर्स्ट टाइम वाले आए थे, बाकी सब आते रहते हैं। 10:30 बजे कोई ज्यादा लोग फ्री नहीं होते हैं, परंतु ऐसे ही रखा था। और उस समय 2 भाइयों ने अच्छी तरह से वहां की बातें सुना करके फिर स्पिरिचुअल सॉल्यूशन की बातें सुनते रहे। तो प्रोग्राम था 1.5 घंटे का, परंतु 2 घंटे तक चलता रहा। और वो अपनी बातें बताते रहे कि जो अभी चला है रिसेंट, उसमें ऐसे हमको लगता है कि मीडिया और पॉलिटिशियंस का प्रोपेगेंडा, जिससे अभी फिर दोबारा युद्ध की तैयारियां हो रही है। और फिर शाम को 10 का छोटा सा संगठन था, परंतु उसमें 2 फॉर्मर जनरल्स थे, एक था नेटो का जनरल और दूसरा था खुद सर्बियन, जो बिल्कुल दुश्मन है बोस्निया का, और खुद से जाकर के बोस्निया में वहां का जनरल बना। और 1 साल तक तो उसको जेल में डाला, क्योंकि उस पर विश्वास नहीं रहता था कि ये वास्तव में ऑपोजिट साइड पर ऐसे सेवा कर सकता। परंतु 2 फॉर्मर मिलिट्री जनरल्स और बाकी 1 यूनिवर्सिटी की मुख्य बहन, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ फिलोसफी एंड साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी की, उनों के साथ भी जो डिस्कशन चलती रही द पावर टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। जो बोस्नियन जनरल था वो फर्स्ट टाइम कांटेक्ट में आया, नेटो वाला जनरल ऑक्सफोर्ड में होके गया है, मधुबन से होके गया है, अभी फिर आने वाला है वो, और उसकी वाइफ है सर्बियन और वो खुद है जर्मन। तो बहुत अच्छी स्पिरिचुअल वातावरण में बहुत गहरी बातें बाबा की निकलती रही। और वो जो बोस्नियन जनरल है वो वॉर के बाद सारे ऑर्फन्स जो थे वॉर के उनों का संगठन करके उसने सबको पालना दी है और एजुकेशन दिलाया है. अभी है नेक्स्ट जेनरेशन और नेक्स्ट जेनरेशन में कहता है उनमें अधिक अधिकार है फर्स्ट जेनरेशन से. और उससे कहता है कि मुझे लगता है कि हो सकता है कि अभी फिर दोबारा युद्ध हो. तो उसमें मैं थोड़ा उस बात पर विचार कर रही थी कि जहां पर भी कोई मेमोरियल यादगार बना के रखते हैं, चाहे स्थूल रीति से चाहे सूक्ष्म रीति से मनुष्य के मन में, वहां पर अवश्य ही अधिक हिंसा होती. मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताती, परंतु आप थोड़ा इस बात पर विचार करना. और जहां पर कुछ अच्छी यादाश्त होती है, अच्छी यादाश्त के साथ कुछ हिंसा भी होती, परंतु फिर भी वो अच्छी यादाश्त भी मदद करती. मानो कि बता रहे थे कि पहले तो हम सब एक परिवार होकर मिलकर रहते थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, रोमन कैथलिक्स और मुस्लिम्स, तीनों का ही. परंतु उस समय तो पता भी नहीं चलता था कौन किस धर्म का है. हम फ्रेंड्स होते थे, नेबर्स होते थे, इंटरमैरिज होती थी, सब कुछ चलता रहा. फिर मीडिया और पॉलिटिशियंस ने ये हाल किया हमारे देश का. तो जो फर्स्ट जनरेशन था उनको कुछ अच्छी यादाश्त थी, तो फिर जितनी भी बातें हुई परंतु फिर भी वो कुछ अच्छी बातें उनको याद रहती थी. तो इतना अधिकार नहीं था. इस जनरेशन को कुछ भी अच्छी मेमोरीज है ही नहीं, सिर्फ जो मीडिया और पॉलिटिशियंस का प्रोपेगेंडा है वो ही सुना है, इस कारण से इतना अधिकार. तो ऐसे समय पर बाबा हमसे क्या चाहते. आज आप मुरली सुनेंगे तो बाबा याद दिलाते हैं कि ऐसे तीव्र पुरुषार्थ करके अपना संपन्न स्वरूप सामने रख करके उसको धारण करें, जो ऐसे विश्व के हालत देख करके उनको कुछ मदद मिले. वो तो एक सीन दूसरी सीन ये देखी बेलग्रेड में और वियना में, हजारें हजारें के अंदाज में रेफ्यूजीज. वो तो मैं ज्यादा वर्णन नहीं करती हूँ, आप लोग आज भी न्यूज में पढ़ लेना, सुन लेना. परंतु छोटा सा शहर है बेलग्रेड, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, परंतु एक बहुत बड़ी संख्या में जहाँ पर उनका स्थान उन्होंने बनाया है मेन ट्रेन स्टेशन के नजदीक, उनके भी बेचारों की हालत देखने जैसी थी. हम ज्यादा अंदर नहीं गए, सिर्फ पास किया, परंतु उसी से ही पता चला कि बाबा जो कहती नहीं कि क्या बच्चे आप लोगों को उनकी पुकार सुनाई नहीं देती, आप उनका पुकार सुन करके कुछ रहम करके उनको कुछ मदद करें. तो बाबा की मुरली आज बता रही है कि हमें अभी क्या करना है. और रामानुसार लंदन का बहुत श्रेष्ठ भाग्य है जो हमारे पास बाबा के महारथी बच्चे आते ही रहते. और कई है जो सूर्य भाई का क्लास सुन चुके हैं, परंतु कई है जो संडे दिन यहाँ आते हैं वो नहीं मिले हैं. तो सूर्य भाई आज क्लास कराएंगे, आइए. कौन है जो सूर्य भाई को नहीं जानते? एक, दो, तीन, चार. बाकी तो मैं समझ ही रही थी कि जो बाबा का ट्रांसमिशन देखते हैं, चाहे मधुबन ना भी गए हैं, परंतु उनको मालूम है कि सूर्य भाई बाबा के मुरली से पहले सबकी बुद्धि को अच्छी तरह से तैयार करते. वेलकम सूर्य भाई.
बहुत सुनने को मन कर रहा था जयंती बहन के द्वारा. समय तेजी से बिगड़ता जा रहा है. मुझे याद आ रही थी बाबा की बात, इस संसार को तुम्हारी सकास की बहुत 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 जरूरत है, तीन बार बोला था बाबा ने. आज की मुरली में भी कुछ ऐसे ही संकेत हैं. तीन बिंदुओं की तो बात बाबा ने कही ही, लेकिन साथ में हमें शक्तियों का स्टॉक और संकल्पों का स्टॉक, शुद्ध संकल्पों का जमा करना है, ताकि आने वाले समय में हम संसार को बहुत मदद कर सकें। सचमुच रिफ्यूजी बन के कोई कहीं जाता है, सब कुछ छोड़कर क्या होता है? मरते रहते हैं लोग, मरने वाले तो मर जाते हैं, लेकिन जो जिंदे होते हैं पीछे उन पर क्या बीतती है हम सब जानते हैं। तीन बिंदु भी बाबा हमें इसलिए लगाना कहते हैं ताकि मन शांत हो, हम सभी को पता रहे। जैसे ही हम बिंदु बनते हैं, बॉडी लेस होते हैं, हमारे सभी संकल्प हमारे इस निराकार स्वरूप में समाने लगते हैं। अपने सभी संकल्पों को शांत करने का, निगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का पहला तरीका है बिंदु होना, निराकार स्थिति। सब कुछ भूलता जाएगा, इससे ऑटोमेटिकली जो भूलना कठिन है, कैसा भी बुरा पास्ट हुआ हो, जैसा हम सुन रहे थे बहन के द्वारा, ऐसा बुरा पास्ट मनुष्य को वायलेंट कर देता है, हिंसक बना देता है, बदले की भावना ले आता है। सब भूलने लगता है जब हम आत्मा होने लगते हैं, तो इसकी हमें बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। और चलते फिरते काम काज में देखो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, मैं ये हूँ ये नहीं, अपने बॉडी को देखेंगे, मैं ये नहीं मैं तो ये हूँ, दिन में कई बार कर लेंगे तो मन वैसे ही बहुत शांत रहेगा। बाबा बिंदु बहुत बड़ी चीज है, न केवल बिंदु रूप में हमें उसे याद करना है, लेकिन बाबा बिंदु हमारे साथ है। याद रखेंगे सभी बाबा की ये बातें, मेरे को तेरे में बदल कर, फिकर बाप को देकर उससे फकुर ले लो और बेफिकर बादशाह बन जाओ। आप सबको याद होगी ये बात, बहुत इसे अपने ख्यालों में रखना चाहिए। बेफिक्र बादशाह हमें इसलिए बनना है ताकि हम संसार के फिक्रों को दूर कर सकें। जितने हम बेफिक्र होंगे, दूसरों की चिंताओं को हरने वाले हो जाएंगे, हमारे वाइब्रेशंस उन्हें रिलैक्स करते हैं, चिंताओं से मुक्त कर देते हैं, उनमें बल आ जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे को तेरे में बदलना, मेरा ये चिंता लाता है, बोझ कर देता है, भारी कर देता है, मेरी जिम्मेदारी, मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर इनसिक्योर है, बहुत सारी फीलिंग मनुष्य को डर भी लाती हैं और चिंतित भी करती हैं, भारी भी करती हैं, लेकिन सब कुछ तेरा, बाबा रेस्पॉन्सिबल है। और बाबा ने कह दिया है, जिसका हाथ बाबा ने पकड़ लिया है, सोचो उसे भविष्य की चिंता होनी चाहिए, बहुत ही बहुत सोचने की चिंतन की बातें। मेरे पास एक परिवार आया अभी, कहा अच्छी पोस्ट पर था, रिटायर हो गया हूँ, पेंशन तो नहीं मिलती है, तीन है परिवार में, मैं सोचता हूँ पैसा नहीं, अब क्या होगा, चिंता थी, बूढ़ा हो गया था चिंता में, आयु 60 साल की थी लेकिन बिल्कुल बूढ़ा। मैंने उसे कहा, तुम भूल गए किसका हाथ तुमने पकड़ा है, किसने वचन दिया है, मेरे बच्चे भूखे नहीं रह सकते। जागृति आ गई उसमें, एकदम जग गया, बाबा ने तो कह दिया है विनाश भी होगा, चारों ओर आग लगेगी, लेकिन बिल्ली के बच्चे सेफ रहेंगे। कितनी भी आग लगेगी हमें कुछ होगा नहीं, परंतु उनको जिन्होंने अपनी स्थिति को बहुत अच्छा रखा होगा, तो कौन मुझे साथ दे रहा है। मैं आजकल सबको ये बात बहुत कहता हूँ, भविष्य के बारे में इनसिक्योर फीलिंग न रहे। ऐसा मस्ती भरा जीवन जीना है कि हमारे पास कुछ भी न हो, पहनने को कपड़े तो होंगे ना, खाने को भी मिलेगा, डांस करते रहें, कुछ भी न हो। इसलिए अपने को, अपने लाइफ को ऐसा सेट करते चलना है, कुछ भी न हो स्टिल बहुत आनंद हो। ये आनंद साधनों के आधार पे नहीं कि बहुत अच्छा घर है, खाने पीने को सुंदर है, अच्छी कार है, ये है वो है तो हम हैप्पी हैं। कुछ ना हो तो भी हम बहुत हैप्पी हैं। मैं लोगों को ये भी सिखाता हूँ, बहुत समस्याएं लेकर आते हैं आजकल। भाई ने पूरा हिस्सा ले लिया, हमें बहुत थोड़ा दिया क्योंकि वो तेज है, हम भोले हैं, ज्यादा ले लिया। मैं उन्हें कहता हूँ नहीं, ज्यादा नहीं लिया। याद करो तुम्हारे साथ सबसे बड़ी संपत्ति है स्वयं भगवान, जिसके होने पर जो भाग्य विधाता है वो साथ है तो संपूर्ण भाग्य तुम्हारा है। वो खाली हो जाएंगे तुम भरपूर रहेंगे, और ये बहुतों के साथ हो गया है। इसलिए ये फकर ले लें, कौन मुझे साथ दे रहा है, जिसका साथ मिलने पर और किसी के साथ की जरूरत नहीं होगी। बाबा ने ये बात बताई हुई है, यदि तुम योग युक्त होगे, बम तुम्हारे पास गिर गया है फटेगा ही नहीं। आवाज हो गई है मार्केट में, बम फटने वाला है, भागो भागो, तुम भागो नहीं, योग युक्त हो जाओ। जब तक तुम सेफ जगह नहीं पहुंच जाओगे बम फटेगा ही नहीं, और तुम्हारी उपस्थिति से बाकी भी सेफ हो जाएंगे। हमें ये भूलना नहीं चाहिए हम कितने पावरफुल हैं और कौन मुझे साथ दे रहा है। इसलिए ये है बाबा बिंदु। कई लोग भारी हो जाते हैं, बिंदु रूप होता नहीं, बुद्धि स्थिर नहीं होती, ना हो ये तो नशा रह सकता है ना। कौन मुझे साथ दे रहा है, जिसका साथ मिलने के बाद बाबा ने कहा, पांडवों का उदाहरण दिया था, पांडवों के साथ स्वयं भगवान थे, विजय उनकी हुई, दूसरी ओर चाहे अक्षौणी सेना हो लेकिन विजय तुम्हारी होगी, क्योंकि सर्वशक्तिवान तुम्हारे साथ है। भाई थोड़ा सा पानी मुझे चाहिएगा। तो हम सभी सेकंड बिंदु लगाएं बाबा, थर्ड ड्रामा का, ड्रामा का बहुत सुंदर ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। दो चार पॉइंट्स को रोज अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे, प्रैक्टिस में लाने का अर्थ है अपने को याद दिलाएंगे। जैसे जैसे अभी आप समाचार सुन रहे थे, हमें दया भी आएगी, हम उन्हें वाइब्रेशंस भी देंगे, लेकिन साथ साथ हम परेशान भी नहीं होंगे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि जो कुछ इस ड्रामा में हो रहा है, जो होगा वही सत्य है। मैं सोचा करता हूँ, बहुत सारी चीजें हमारे पास यज्ञ में आती रहती हैं, मैं सोचता हूँ जब भगवान साक्षी है, जो मालिक है, तो हम क्यों परेशान। आप भी सोचना, बाबा साकार में ही कहते थे, जैसे मैं ऊपर बैठकर इस संसार के खेल को साक्षी होकर देखता हूँ, वैसे ही तुम भी देखो। और जैसे मैं सकास देता हूँ ऊपर से, वैसे ही तुम भी दो तो तुम बाप समान बन जाओगे। बाप समान बनने की दो बातें मुझे साकार मुरलियों से बहुत पहले मिली थी, साक्षी और सकास। तो ड्रामा की कुछ बातों को हम अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह संभालें। दूसरी बात, जो कुछ हो रहा है वो वही हो रहा है जो कल्प पहले हुआ था, नथिंग न्यू। बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए इसकी, नथिंग न्यू। जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा को भी थी बहुत, और शिव बाबा का तो है ही, हम भी इसकी बहुत प्रैक्टिस करें। ड्रामा की कुछ बातें बिल्कुल पकड़ ले अपने पास, और जो कुछ अब होगा हम सब जानते हैं क्या क्या होगा। बाबा ने साकार मुरलियों में भी सारे रहस्य खोले थे, खूने ना खेल होंगे, वो सब कुछ होगा जिसको देखना भी मुश्किल होगा, देखने वाले ही मर जाएंगे। हम अभी से सब कुछ एक्सेप्ट करते चलें, मेंटली अपने को तैयार करते चलें, जो कुछ हो रहा है जो कुछ होगा वो नहीं होगा जो हम चाहते हैं, वो होगा जो, मैं तो यही कहा करता हूँ, जो प्रभु प्लान है तो ड्रामा, पर वही होगा। इसलिए जो कुछ होगा वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं होगा, हमें उसे स्वीकार करना ही है, लेकिन सकास देना है। क्योंकि नेक्स्ट बात जो ड्रामा की हमें याद करके बिंदु लगाना है, हर व्यक्ति के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार उसके कर्म स्वयं हैं। किसी के साथ बिना कर्मों के कुछ भी नहीं हो रहा है, जो कुछ हो रहा है इसलिए वो होना ही चाहिए, ये बाबा ने कहा। हम तो वर्तमान दृष्टि से देखते हैं ये व्यक्ति कितना अच्छा, बेचारे को क्या हो रहा है, लेकिन अगर बाबा की जगह बैठकर हम देखें तो उसने क्या क्या किया होगा पूर्व में, उसका फल उसे मिल रहा है, वो हमें पता नहीं। इसलिए बाबा साक्षी है और हम थोड़े से चिंतित हो जाते हैं। तो ड्रामा के ज्ञान की मैं आपको ये संकल्प देता हूँ, कम से कम 10 पॉइंट्स आप निकाल लें अपने पास, चिंतन करके उन्हें रोज एक बार पहले पढ़ लिया करें, उनमें से 5 को कम से कम अपना जीवन का लक्ष्य बना लें, उसका स्वरूप हमें बनकर अपने को निश्चिंत करना है। क्योंकि जितना हम निसंकल्प होंगे, आज की मुरली से आप सुनेंगे, शुद्ध संकल्पों का खजाना उतना ही बढ़ता चलेगा, और ये बहुत बड़ा खजाना है। जिसके पास श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना हो, जिसके पास शक्तियों का खजाना हो, खुशी का खजाना हो, वो सबसे अधिक धनवान है। और जो स्थूल धन से तो संपन्न हो परंतु खुशी के लिए क्या करता हो, बड़ी मुश्किल हो रही हो, रात को करवटे बदलता हो, चित्त में चैन न हो, तो वो व्यक्ति धनवान नहीं है। बहुत पहले बाबा व्यक्त हुए तो हम लोग अपने पास एक स्लोगन रखा करते थे, सबसे अधिक धनवान वही है जो इच्छाओं से मुक्त है और संतुष्ट है। तो हमें शक्तियों का स्टॉक भी फुल करना है, और संकल्पों के खजानों से भी स्वयं को भरपूर करना है। आज की मुरली में जो ये था, 3 बिंदु लगाओ, इससे हमारी संकल्प शक्ति यानी विल पावर बहुत बढ़ जाएगी, और संसार की अनेक समस्याओं का समाधान मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ इससे हम करेंगे। तो हम सभी स्वीकार करें, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया करता हूँ, आपने सुना है शेर का बच्चा। शेर के बच्चे को आप देखो, उसमें सारी शेर की क्वालिटीज हैं, थोड़ी क्यों ना हो, धीरे धीरे बढ़ेंगी। हम भगवान के बच्चे हैं, उसकी सारी क्वालिटीज हमारे अंदर भी हैं, हमें उन्हें बढ़ाना है। वो सर्वशक्तिवान है तो हम भी बहुत शक्तिशाली हैं। तो एक चीज जो मैं हमेशा सुनाता हूँ, जहाँ से मेरे संकल्प शक्ति के एक्सपेरिमेंट शुरू हुए थे, बाबा के एक मैसेज में बहुत साल पहले सुना था, 40 साल हुए होंगे, प्रॉब्लम्स क्या हैं? तो बाबा ने उत्तर दिया था, इसको डिफाइन किया, प्रॉब्लम्स और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। यहाँ से ये पॉइंट मुझे क्लिक हुई कि अगर कमजोर मन संकल्प क्रिएट करता है तो शक्तिशाली मन उन्हें नष्ट भी तो करेगा। तो मैंने खुद पे अभ्यास शुरू किए, और सबसे शक्तिशाली संकल्प अगर कोई संसार में है तो यही है, मैं मास्टर ऑल वाइट हूँ। इससे शक्तिशाली संकल्प दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। तो मुझे नए नए अनुभव होते गए, मैं सुनता था, पढ़ते थे तब से सुनता था कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं तुम्हारे अंदर बहुत शक्तियां हैं, वो सोई हुई हैं, उन्हें जागृत करो। कैसे जागृत करें ये किसी को पता नहीं था, वो कोई मनुष्य तो नहीं है जिसे जगा दें। शक्तियों को कैसे जागृत करें? तो जैसे ही ये बाबा बोलते रहते थे, अव्यक्त होने के बाद बहुत मुरलियां चलती रही, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, हम धीरे धीरे इस फीलिंग में आए, जल्दी नहीं आए, टाइम लगा इसमें। तो समझ में आया इससे हमारी सोई हुई शक्तियां जागृत होती हैं। सभी इसका बहुत अभ्यास करेंगे, मेरे अनुभव में इतनी अच्छी अच्छी चीजें आ गई सबके साथ कि जो इम्पॉसिबल घटनाएं थी, इम्पॉसिबल समाधान न होने वाली समस्याएं, वो फटाफट इससे ठीक हो गई। 5 केस ऐसे अच्छे हुए जिनके यंग बच्चे लड़के चले गए उनसे रूस के, माँ परेशान दुखी, 5 साल हो गए, ज्ञान में आ गई, मेरे पास आए, मैं भट्टी के लिए बहुत जाता हूँ, तो कहा ऐसे ऐसे हो गया, बेचारी बोलते ही रोने लगी। मैंने कहा पहले तो धन्यवाद दो अपने बच्चे को जो तुम्हें छोड़ के चला गया, क्यों कि तुम भगवान के पास आ गई। तब खुश हुई फिर, हाँ ये बात तो ठीक है। मैंने इतना ही सिखाया, एक टाइम फिक्स करो और 108 बार बहुत अच्छी तरह याद करो या लिखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और लास्ट में अपने बच्चे को आत्मा देखकर उसका आह्वान करो कि बेटा आ जाओ। और ये मिरेकल थे 5 केस में, 21 डेज पूरा होते ही 22 डेज में बच्चे का सवेरे ही फोन आ गया, मम्मी मैं यहाँ हूँ, आपकी बहुत याद आ रही है, अभी आ जाता हूँ, उसी दिन आ गया। बहुत अच्छे ये अनुभव रहे, बहुत अच्छे। दिल्ली का एक बहुत अच्छा बीके वीआईपी है, वो 37 इयर्स से उसका कोर्ट केस चल रहा था, आप समझ सकते हैं 37 इयर्स बोर हो गए बेचारे, टेंशन, बार बार अपील के डेट लगे, परेशान। उसने ये स्वमान लेकर 21 दिन योग किया, 1 घंटा रोज, 25वें दिन डेट मिली, एक ही अपील में फैसला आ गया इनके फेवर में। भोग लगवाने आए मधुबन में, शांतिवन में, कि देखो 37 इयर्स की टेंशन ऐसे समाप्त हुई। तो बहुत बड़ा मैजिक है मास्टर ऑलमाइटी की फीलिंग में, इसको सभी बढ़ाते चलेंगे, इससे हमारी सोई हुई शक्तियां जागृत होंगी। मैं थोड़ा सा आपको कहूँ, मैं सब कॉन्शियस माइंड पर आजकल बहुत ये प्रयोग कराता हूँ, आपके पास जिस शक्ति की भी कमी हो, सवेरे उठते ही आप उसका आह्वान करेंगे। बाबा की मुरलियों में आपने सुना होगा, शक्तियों का, गुणों का, टैलेंट्स का आह्वान करो। आह्वान किया जा सकता है, कैसे करेंगे? आंख खुली, बाबा को गुड मॉर्निंग की, और हमेशा ये काम करना है, बाबा को खुले दिल से बात करनी है, बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। जुड़ जाएंगे उससे, फिर 7 टाइम याद कर लो, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। और मान लो आपके पास सहन शक्ति की कमी है, तो संकल्प कर दो, मैं सहनशीलता की देवी हूँ, मैं सहन शक्ति का अवतार हूँ। आने लगेगी, क्योंकि वो है हमारे पास, केवल वो मर्ज रहती है, इमर्ज होने लगेगी। आपके पास निर्णय शक्ति कम है, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ 7 बार करके संकल्प कर दो, मेरी निर्णय शक्ति परफेक्ट है। आपकी मेमोरी वीक होती जा रही है, संकल्प कर दो, मेरी मेमोरी बिल्कुल सुंदर है, परफेक्ट है। नहीं तो माताएं बार बार कहती हैं, भूलता है सब कुछ, भाई जी मुरली याद नहीं रहती, सारा दिन कहते हैं मैं भुलक्कड़ हो गई हूँ। तो जो संकल्प हम बार बार करेंगे, उसको हम क्रिएट करते हैं। आप बार बार कह रहे हैं मुझे सब कुछ भूलता है, मुरली याद नहीं रहती, तो और भूलने लगेगा। उठते ही संकल्प करना, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मेरी मेमोरी बहुत सुंदर है, मुझे बाबा की मुरली बहुत याद रहती है। याद रहेगी, तो 4 दिन में ही आप चेंज देखेंगे। कई लोग गलती करते हैं, सवेरे 4 बजे आँख खुली, छोटी बातें बता रहा हूँ, सवेरे 4 बजे आँख खुली, घड़ी देखी 4 बजे है, बाबा गुड मॉर्निंग, योग तो लगता नहीं, इससे तो अच्छा है सो ही जाऊं। पहला ही संकल्प कर दिया, योग लगता नहीं, तथास्तु हो जाएगा, वरदान मिल गया, अभी नहीं लगेगा। क्योंकि हमारे मन का जो उठते ही पहला संकल्प होता है, क्योंकि तब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, फुल्ली एक्टिव है, उसका बहुत गहरा इफेक्ट हमारी स्थिति पर पड़ता है। इसे उठते जो संकल्प हम करेंगे वही हो जाएगा। तो उठते ही संकल्प करो, बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, मेरे जैसा सुखी कोई नहीं, मैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हूँ, है या नहीं? हैं सभी, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं श्रेष्ठ योगी हूँ। संकल्प करो, तनाव से मुक्त, समस्याओं से मुक्त। सुंदर संकल्प करने में क्या जाता है, देखो मैं एक उदाहरण और देता हूँ। जिसको घुटने दर्द होता है ना, नी पेन, रात को जब सोएंगे तो घुटने अकड़ जाएंगे, ठंड वन में सोने से आँख खुली, ओ बाबा बहुत दर्द है, पहला संकल्प क्या किया, बाबा बहुत दर्द है, दर्द बढ़ जाएगा, पहला संकल्प अवॉइड करो। ये अगर आप ये संकल्प कर लें, मेरे घुटने बिल्कुल ठीक हैं, स्ट्रांग है, मैं बाहर सड़क पर तेजी से दौड़ सकता हूँ, दौड़ सकती हूँ, फटाफट काम होगा। बहुत एक्सपेरिमेंट कराए मैंने लोगों से, घुटने दर्द वालों से तो खास, बहुतों को घुटने दर्द है आजकल। और मुझे एक साइकेट्रिक डॉक्टर ने बताया कि तुम सुनाया करो अपनी क्लास में, ये जिनके माइंड पर कोई प्रेशर रहता है ना, उनको घुटने दर्द ज्यादा होता है। मुक्त हो जाए प्रेशर से, हल्का करें अपने को, तो ड्रामा का ये ज्ञान और बाबा का ज्ञान हमें हल्का करता है। संकल्प शक्ति हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। बहुत लोग दुनिया में भी कहते हैं कि कुछ लोगों की सबकॉन्शियस माइंड की पावर काम करती है, कुछ लोगों की नहीं करती। जिनकी नहीं करती उनके 2 कारण हैं, उसमें विश्वास की कमी, और दूसरा मन हो ही बहुत वीक गया है। अब वीक माइंड में पावर ही नहीं है तो काम कैसे करेगी। इसलिए मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, इसका बहुत अच्छा अभ्यास, साथ में योग, साथ में तीनों बिंदु प्रयोग करने से हम बहुत पावरफुल बन जाएंगे। और तब ये बाबा ने सब बताया हुआ है, विनाश हो रहा है, आप जस्ट उन्हें दृष्टि देंगे, यहाँ से मस्तक से शक्तियों की किरणें फैलती लोगों को नजर आएंगी, न केवल फील होंगी, दिखाई देंगी। एक बार होली पर बाबा ने ये कहा था कि तुम्हारे मस्तक से शक्तियों की रंग बिरंगी पिचकारी निकलती हुई दिखाई देंगी, ये सत्य होने जा रहा है। इसलिए जो अभ्यास हम बहुत समय करेंगे वही लोगों को दिखाई देंगे। आज की मुरली में आप सुनेंगे बाबा ये चाहते हैं सबका जीवन ऐसा दर्पण बन जाए जिसमें लोग अपने तीनों कालों को देख सके, अपने भाग्य को देख सके, आप पर चमकती हुई नजर आए, आंखों से लाइट निकलती हुई नजर आए। तो जिन्होंने अच्छे अभ्यास किए होंगे ये स्वरूप संसार को उनका दिखाई देगा। तो एक बहुत सुंदर समय भी हमारे सामने आ रहा है, क्रिटिकल पीरियड भी विनाश का, बहुत खतरनाक समय भी, लेकिन बहुत सुंदर समय भी जय जयकार का, जिसमें बाबा की, बाबा के महान बच्चों की जय जयकार होगी। बाबा ने ये कह दिया है कि बाबा की प्रत्यक्षता होगी एकदम एंड में, क्योंकि बाबा की प्रत्यक्षता होना माना समाप्ति, उससे पहले अश्रतन और सो यानी 108 रत्नों की जय जयकार होगी, संसार के अलग अलग एरियाज में उनकी प्रत्यक्षता होगी। और ये एक विशेष बात है, आप सभी को ये सीक्रेट ख्याल रखना है कि बाबा ने अपनी ये महान आत्माएं संसार में अलग अलग जगह रखी हुई हैं, वहाँ उनकी उपस्थिति उस एरिया के मनुष्यों के लिए सहारा बन जाएगी, वहाँ के उनके वाइब्रेशंस सबको सुरक्षित करेंगे। मैं एक और सीक्रेट आपको बता दूं, मुझे याद आ गया, वैज्ञानिकों के द्वारा ये रिसर्च हुई है रशिया या जापान के, तो उनको थीम दी गई थी, बहुत सुंदर ये बात है हम सब के लिए। उन्हें पूछा गया, एक लक्ष्य दिया गया कि इस पे रिसर्च करो कि जब भूकंप होते हैं, कैलेमिटीज होती हैं, तब जो होली प्लेसेज है ना, मंदिर, चर्चेज, मस्जिदें या और होली प्लेसेज, वो सेफ रहते हैं। ये हम सब देखते हैं, हम तो भारत में बहुत देखते हैं, वो सेफ रहते हैं, कोई कोई नष्ट होते हैं, सेफ रहते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? नॉर्मली लोग भावना वाले ये कहेंगे भाई भगवान के स्थान है वो सेफ रखता है, लेकिन ऐसा नहीं। तो उन्होंने जो कंक्लूजन दिया वो ये था कि इन स्थानों से जो प्योर वेव्स फैलती हैं तो वो विनाश की वेव्स को रोक देती हैं। ये मुझे भी हमारी एक क्लास में, ग्रुप में एक अच्छे साइंटिस्ट ने सुनाया, तो मुझे एकदम कितना अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि जहाँ विनाश काल में जहाँ पवित्र और पावरफुल आत्माएं होंगी उनके वाइब्रेशंस विनाश की तरंगों को रोकते रहेंगे। तो बाबा ने अपने 108 रत्न विशेष रूप से अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं, उनकी वहाँ उपस्थिति उनके वाइब्रेशंस प्रोटेक्ट करेंगे, सुरक्षित करेंगे, मदद करेंगे, सहारे का अनुभव कराएंगे बहुतों को, और वही उनके लिए इष्ट देव देवी बन जाएंगे। तो ये उनकी जय जयकार होगी, और फिर वो जिनकी जय जयकार होगी वो बाबा से जोड़ेंगे उन्हें। तो एक सुंदर समय की ओर भी हम चल रहे हैं, इसलिए सभी, मैं लास्ट बात आपको ये कहूंगा, सभी अपने को व्यर्थ से, उलझनों से, बिना मतलब की इधर उधर देखने से मुक्त करें। ब्राह्मणों को आदत भी है ना इधर उधर देखने की, जो देखना चाहिए उसे नहीं देखते। देखते हैं जो देखना ही नहीं चाहिए। आंखें बंद करनी, दादी जानकी के शब्द हैं। जब हम छोटे थे, दादी मधुबन में बहुत रहती थी, कहती थी संसार में ऐसे जियो आंखें बंद करके, कान भी बंद करके जियो। हमें बड़ा अच्छा लगता था। इसलिए मैंने अपने पास एक सुंदर संकल्प रख लिया था। देखिए, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स की क्लास में तो जाकर नहीं बैठेंगे ना कि लेक्चरर क्या पढ़ा रहा है सुन के तो आऊं, या एटॉमिक एनर्जी वाली क्लास केमिस्ट्री की, वो बड़ा अच्छा है, जानना तो चाहिए मुझे, वहां आपको लोग जाने भी नहीं देंगे। मैंने अपने पास संकल्प रख लिया, बहुत काम आया मुझे शुरू में, अब से 45 साल पहले, पर चिंतन और पर दर्शन ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। बहुत मदद, कहीं भी जरा सा होता था वो सब कॉन्शियस माइंड में ही चला गया था, ये तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि अगर मनुष्य वो सब कुछ देखता है, सुनता है, इंटरेस्ट रखता है उन चीजों में जो बेकार हैं, तो हमारी सारी शक्तियां, हमारी संकल्प शक्ति नष्ट होती है, जिससे हमें बड़े बड़े काम करने हैं। मैंने पहले दिन एक बात सुनाई थी, अभी आप सब सुन लें, वो बहुत सुंदर बात है। जो कार्य हमें करने हैं आने वाले दिनों में, उसके लिए सभी अपने को तैयार करें। और आपके संगठन से भी कुछ ऐसी आत्माएं हैं यहाँ, होनी चाहिए, जो अपने को इस महान कार्य के लिए तैयार करें, बाकी सब चीजों से बुद्धि को डिटैच कर दें, एक तरफ चलेंगे। क्या था वो? 1975 में गुलजार दादी के द्वारा राखी पर एक बहुत सुंदर मैसेज मधुबन में आया, छोटा सा, कि आगे चलकर तुम्हारे सामने बीमार लोगों की भीड़ आएंगी और तुम एक साथ उन्हें दृष्टि देंगे और वो सभी निरोग हो जाएंगे। लेकिन ये काम उनके द्वारा होगा जो संपूर्ण निर्विकारी होंगे। मुझे बहुत भाग गया ये संदेश। धीरे धीरे मैंने इसके पीछे जो फिलॉसफी है उसको जानने के लिए विचार किए, सोचा, तो समझ में आ गया प्योर एनर्जी ही सबसे पावरफुल हीलिंग एनर्जी है। और ये आंखों से निकलेगी ना वाइब्रेशंस, जिस पे पड़ेंगे उसके रोग ठीक होंगे। आप लक्ष्य बनाए इसको अपना, क्योंकि दवाइयां मिलेंगी नहीं, मेडिकल साइंस बिल्कुल फेल हो जाएगी और फेल होती जा रही है। बड़े बड़े डॉक्टर्स बताते रहते हैं कि दवाइयां रेस्पॉन्स नहीं कर रही हैं, और जो साइकेट्रिक बीमारी है उनका तो इलाज हो ही नहीं रहा है। तो आप सभी डॉक्टर बन जाएंगे, बनेंगे स्पिरिचुअल डॉक्टर, दृष्टि देंगे, कुछ अच्छे शब्द बोलेंगे, लोग रिलैक्स होंगे, निरोग होंगे। तो बड़े बड़े कार्य सबको करने हैं, करेंगे अपने को तैयार इसके लिए। इसलिए अपने को समय भी देना है। कई भाई बहने अपने को समय नहीं देते। मैं आप सभी को कहूंगा आधा घंटा रोज एकांत में होकर अपने से सुंदर बातें करें, रोज करनी है। कई क्वेश्चन हम अपने से पूछा करें। देखो, मुझे आजकल एक संकल्प बहुत सुंदर अनुभूति कराता है। हम ज्ञान सरोवर में मैं जब होता हूँ तो शाम को अगर प्रोग्राम नहीं है तो मैं फ्री होता हूँ। मुझे ऐसे टाइम कम मिलते हैं आजकल, रिकॉर्डिंग करनी होती है, बाहर जाना होता है। जब भी टाइम मिल गया और मैं अपने रूम से बाहर आऊंगा तो मुझे आते ही एक संकल्प आता है इवनिंग में, तुम पूर्वज हो, तुम एक महान आत्मा हो, तुम्हारा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है। और ये एक संकल्प ही काफी होता है, बस और कुछ सोचने का नहीं रहता। सभी संकल्पों को शांत कर देता है। ये संकल्प मन मगन हो जाता है। आधा घंटा रोज एकांत लेकर सभी अपने से ऐसी बातें किया करें, कौन हो तुम, किसकी दृष्टि है तुम पर, वो तुम्हें क्या बनाना चाहता है, अपने को आने वाले समय के लिए उन महान कार्यों के लिए तैयार कर दें जिसके लिए बाबा ने हमारी पालना की है। चिंतन करेंगे रोज एकांत में। मुझे बाबा के शब्द ये बहुत प्यारे लगते हैं, जैसे बाप ने तुम्हारी पालना की वैसे ही तुम भी सबकी पालना करो। आप में से जो पूर्वज हैं, पूर्वज मैं उन्हें कहता हूँ जो लंबे समय से ज्ञान में हैं, कई कुमार मिलते हैं, हम 40 साल से हैं, मैं कहता हूँ तुम पूर्वज कुमार हो, छोटे कुमारों की पालना करो। बहने मिलती हैं, हम 40 साल से हैं, अब तुम पूर्वज हो, दूसरों की पालना करो। तो हमारा अपना जीवन अब ऐसा सुंदर हो जाए कि हम सबकी पालना करते रहें। तो सभी अपने से बातें करें रोज आधा घंटा एकांत, अपने लिए केवल, कोई न हो। क्या मैं वो कर रहा हूँ, कर रही हूँ जिसके लिए ये समय है? ये समय दोबारा नहीं आएगा। क्या इस समय का सदुपयोग हम कर रहे हैं? क्या मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे कर लेना चाहिए? क्या मैं वो कर रही हूँ जो मैं कर सकती हूँ? ये सबसे सुंदर संकल्प है। हर एक बाबा का बच्चा जितना अब कर रहा है उससे कई गुना ज्यादा कर सकता है। अपने को मोटिवेट करें इस तरह और अपनी रफ्तार को तेज करेंगे तो आज से तीनों बिंदु लगाएंगे और इस लाइफ को लाइट हाउस बनाएंगे। योगी चलते फिरते लाइट हाउस होते हैं ताकि सबको लाइट मिलती रहे, प्रकाश मिलता रहे। ओम शांति।
सूर्य भाई को तालियों से तो थैंक्स दी, परंतु सभी मन से भी थैंक्स दे रहे हैं कि बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा की मूल्यों की प्रैक्टिकल जीवन में कैसे आए, उन पर अभ्यास की बातें बताई। थैंक यू।